सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित इस पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं संजय बैनर्जी का नमस्कार। सुनो दिल से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज दिलचस्प दौर में पहुंच रही है। पहले दो टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है, यही नहीं तीसरे टेस्ट का पहला दिन भी उसके हक में झुका दिखता है। 63 के स्कोर पर इंग्लैंड अपने शुरुआती 3 विकेट गवा चुका है, लेकिन गनीमत है कि रूट और बेस्टो अभी क्रीज पर हैं और स्टोक्स का खेलना बाकी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मार्श की पारी को माइनस कर दें तो बल्ले से कुछ खास नहीं निकला। तीसरे टेस्ट में गेंदबाज हावी हैं, इंग्लैंड के पास अब भी वापसी का बेहतरीन मौका है और इस टेस्ट में हार उसके हाथ से सीरीज को दूर कर देगी। उधर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 जुलाई से डोमिनिका में करने वाली है। लगातार 2 दफा फाइनल में हारने वाली भारतीय टीम के लिए तीसरी बार आसान शुरुआत है, लेकिन मसला आगाज का नहीं अंजाम का है। वेस्टइंडीज की टीम दोहरी मार से परेशान है, उसे अक्टूबर में भारत में होने वाले विश्व कप में खेलने का टिकट भी नहीं मिला। 48 साल के विश्व कप इतिहास में वेस्टइंडीज ने शुरुआत के दोनों खिताब जीते, लेकिन अब हालात ये है कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। ऐसे में विपक्ष के तौर पर भारत उसके लिए निश्चित तौर पर भारी पड़ने वाला है। टीम इंडिया इन दिनों वेस्टइंडीज में प्रैक्टिस में जुटी है और उधर मेजबान टीम के कुछ खिलाड़ी अभी भी जिम्बाब्वे में विश्व कप क्वालिफायर्स खेलने में बिजी हैं। कैप्टन क्रेग ब्रेथवेट के लिए टीम को भारत के खिलाफ मानसिक मजबूती के साथ मैदान में उतारना एक बड़ी चुनौती है। क्वालिफायर्स में खेलने वाले 2 तेज गेंदबाजों अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर को 2 मैच बाकी रहते स्वदेश बुला लिया गया। वेस्टइंडीज की टीम आज क्वालिफायर्स का अपना अंतिम सुपर 6 मैच श्रीलंका से खेल रही है। ऐसे में इस टीम के कुछ प्लेयर्स को नेट ज्वाइन करने के लिए नाम मात्र का समय ही मिल सकेगा। इस सीरीज में भारत के लिए कुछ खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है। भविष्य में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और भरत श्रीकर जैसे बल्लेबाज और मुकेश कुमार जैसे गेंदबाज भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, अश्विन और जडेजा की मौजूदगी में इन प्लेयर्स को अपनी मजबूत पहचान बनाने का ये बेहतरीन मौका है। 2 टेस्ट के बाद दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 5 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज का अतीत इतना समृद्ध रहा है कि अब भी आंकड़ों में पलड़ा उसी का भारी है। दोनों के बीच 98 मुकाबलों में भारत ने 22 और वेस्टइंडीज ने 30 मैच जीते हैं। मेहमान भारत ने पिछली सीरीज 2019 में खेली थी और दोनों टेस्ट जीते थे। वेस्टइंडीज ने पिछली 3 टेस्ट सीरीज विदेश में खेली और उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन अपनी जमीन पर वेस्टइंडीज ने पिछली दोनों सीरीज में बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज की। ऐसे में इस सीरीज को वॉक ओवर मानकर चलना ठीक नहीं होगा। इस बीच अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर चुन लिया गया है। उनको पहली टीम चुनने का मौका वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज के दौरान मिला, जिसमें उन्होंने सीनियर्स की बजाय यंग ब्रिगेड पर भरोसा किया। रोहित और विराट जैसे प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया। ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मुकेश कुमार को शामिल कर ये बताने की कोशिश की गई कि अब सबसे छोटे फॉर्मेट में इन्हीं के दिन आने वाले हैं। हार्दिक पंड्या कैप्टन बने रहेंगे। चयन समिति में अगरकर के साथ सलिल अंकोला, सुब्रतो बैनर्जी, शिव सुंदर दास और एस शरद शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही वेस्टइंडीज दौरे के लिए टेस्ट और वनडे टीम का चयन कर लिया था। अगरकर के नाम आज भी वनडे में भारत के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है। उनको लॉर्ड्स टेस्ट में शतक जमाने का गौरव भी मिल चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अजीत अगरकर की अगुवाई में सिलेक्शन कमेटी भविष्य में बेहतर और तर्कसंगत चयन कर सकेगी। उधर भारत ए टीम कोलंबो में 13 से 23 जुलाई तक 8 देशों की इमर्जिंग एशिया कप में हिस्सा लेगी। इस टीम का कप्तान यश धुल को बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत चुका है। हाल ही में भारत की महिला ए टीम ने इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जीता है। पंजाब के अभिषेक शर्मा टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं। इसमें प्रभुसिमरन सिंह, ध्रुव जुरेल और रियान पराग जैसे प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है। नेपाल को छोड़कर बाकी देश इसमें अपनी ए टीम भेज रही हैं। भारत को नेपाल, यूएई और पाकिस्तान के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान हैं। दोनों ग्रुप से दो टॉप टीमें 21 जुलाई को सेमीफाइनल खेलेंगी। फाइनल 23 जुलाई को खेला जाएगा। भारत का पहला मैच यूएई से 13 को, दूसरा पाकिस्तान से 15 को और तीसरा नेपाल से 17 जुलाई को होगा। भारत में अक्टूबर नवंबर में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप में लगभग 3.5 महीने से भी कम का समय बाकी है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को लेकर असमंजस कायम है। सुरक्षा के नजरिए से पाकिस्तान ने अपने मैच स्थलों का जायजा लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है, फिर भी अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार को ही करना है। इस बीच जिन राज्यों को विश्व कप के मुकाबले नहीं मिले, वहां बोर्ड ने द्विपक्षीय सीरीज के मैच देने का मन बनाया है। कई राज्य अपने यहां विश्व कप का मैच नहीं मिलने से नाराज थे, लेकिन अब इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बीसीसीआई ने नया फॉर्मूला निकाल लिया है। उधर जिम्बाब्वे में विश्व कप क्वालिफायर्स के दौरान काफी उलटफेर देखने को मिले। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को अंतिम रूप से विश्व कप में खेलने का टिकट नहीं मिला। दोनों को स्कॉटलैंड से हारने के बाद ही विश्व कप की होड़ से बाहर होना पड़ा है। दूसरी ओर श्रीलंका और नीदरलैंड्स ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत में होने वाले विश्व कप में कुल 10 देशों को शिरकत करनी है, जिसके लिए 8 टीमों ने पहले ही खेलने की पात्रता हासिल कर ली थी। बाकी 2 टीमों के लिए ये क्वालिफायर्स आयोजित किए गए। ये पहला मौका होगा जब वेस्टइंडीज की टीम वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगी। ये दिलचस्प है कि अगला T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज में ही अगले साल खेला जाना है। इस बीच भारत की महिला टीम बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए तैयार है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम मीरपुर में रविवार से 3 T20 मैचेस खेलेगी और इसके बाद 3 वनडे मैच खेले जाने हैं। 18 सदस्यीय भारतीय टीम में अनुभवी ऋचा घोष, रेणुका सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा के नाम शामिल नहीं है। असम की उमा क्षेत्री, मिन्नू मणि, आंध्र प्रदेश की अनुषा और राशि कनौजिया को पहली बार बुलाया गया है। प्रिया पूनिया और मोनिका पटेल की वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद पहली बार भारतीय टीम को किसी सीरीज में खेलने का मौका मिलेगा। और अब डोमेस्टिक क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी, दोनों सेमीफाइनल मैचों का आज तीसरा दिन है। बेंगलुरु में नॉर्थ जोन की पहली पारी 198 पर सिमट गई, जिसके जवाब में साउथ जोन मयंक अग्रवाल के 76 और तिलक वर्मा के 46 रन के बावजूद 3 रन से पीछे रह गई। दूसरी पारी में नॉर्थ जोन ने कल 2 विकेट पर 51 रन बनाए। आलूर में भी कम स्कोर वाला एक अन्य मुकाबला जारी है। वेस्ट जोन ने पहली पारी में 220 और दूसरी पारी में 3 विकेट पर 149 रन बनाए थे। इंडियन टीम से बाहर होने वाले चेतेश्वर पुजारा पहली पारी में खराब खेल के बाद दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ चुके हैं। साथ ही सूर्य कुमार यादव भी हाफ सेंचुरी बना ली है। सेंट्रल जोन के कैप्टन शिवम मावी ने पहली पारी में 6 विकेट लिए। हालांकि सेंट्रल जोन पहली पारी में 128 रन बनाने के कारण मैच में स्ट्रगल कर रही है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में सेंट्रल जोन ने ईस्ट को 170 से और नॉर्थ जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को 511 रन के बड़े फासले से पराजित किया था। तो ये था सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित हमारा पॉडकास्ट सुनो दिल से। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।